فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب
نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قال الله تبارك تعالى في القرآن المجيد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَمِنْهُم مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ أُولَئِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِمَّا كَسَبُوا وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك آپ کے سامنے سورت البقرہ کی آیت نمبر 200 اور اسے اگلی ایک آیت رکھی ہے اگر اس کا ترجمہ دیکھیں تو وہ کیا ہے فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُمْ پھر جب تم اپنے منسک یعنی مناسک اپنی عبادت پوری کر چکو تو فَاذْكُرُوا اللَّهَ تو اللہ کا ذکر کرو کیسا کا ذکرکم آباءکم جیسے تم اپنے باپ دادا کا ذکر کرتے ہو بلکہ او اشد ذکر اس سے بھی زیادہ ذکر کرو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی طرف سے کچھ خبر دیتے ہیں ہمیں فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا لوگوں میں کچھ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں یا جو کہتا ہے کہ رب ہمیں دنیا میں دے دے یعنی جب بھی مانگتا ہے تو دنیا ہی مانگتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاق ایسے لوگوں کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے جواب بھی واضح ہے کیوں نہیں ہے کیونکہ مانگا ہی نہیں دنیا مانگی اس کا کچھ نہیں لکھا کہ ان کے مانگنے پہ دنیا ملتی ہے کہ نہیں لیکن یہ کہہ دیا کہ صرف دنیا مانگنے والے کو آخرت میں کچھ نہیں ملے گا سوال صاف ہے اور جواب بھی بالکل واضح ہے جو نہ مانگا نہ ملا لیکن کچھ خوش قسمت لوگ ہیں وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً کچھ لوگ ایسے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ ہمیں دنیا میں بھی دے مگر حسنہ اور حسنہ دنیا میں کیا ہوتا ہے جو اللہ کی رضا سے ملے اور جس کو پا کر رب کو راضی رکھے حلال مال حسنہ ہے نافرمانی کا حرام کا ناجائز چیزوں کا مال کبھی بھی حسنہ نہیں ہو سکتا تو وہ کہتے ہیں کہ اللہ دنیا چاہیے بہت چاہیے لیکن وہ چاہیے جس کو پا کر تجھ سے بھی راضی رہے اور تو ہم سے راضی رہے اور ساتھ ہی ساتھ وفی الآخرت ہی حسنہ آخرت کا بھی حسنہ چاہیے وہ کیا ہے جنت ہے اللہ کی رضا ہے اللہ کے چہرے کا دیدار ہے یعنی آخرت کی ہر بھلائی اور ساتھ ہی اندیشہ اتنا لگا ہوا ہے عذاب کا یا جہنم کا کہتے ہیں وقنا عذاب النار کہ اللہ جنت دے لیکن اور بھی دعا ہے کہ آگ میں نہ ڈالنا کیونکہ کچھ لوگوں کو جنت ملے گی لیکن اس سے پہلے آگ میں کچھ ڈبکیاں لگ جائیں گی تو یہ اتنے عقل مند لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ اللہ हमें जन्नत चाहिए लेकिन जहन्नुम में से गुजर के नहीं, जहन्नुम से ऊपर से गुजर जाएं, बस इतना ही काफी है। और अल्लाह ताला का फैसला क्या है, उलाइक लहुम नसीब मिम्मा कसबू, ये वो लोग हैं जिनका हिस्सा होगा जो उन्होंने कमाया। नोट कीजिए लफ्ज कसबू को, कसब क्या होता है, कमाई। ये नहीं कहा उलाइक लहुम नसीबो मिम्मा यदून, उनको उनकी दुआओं का हिस्सा मिल जाएगा। क्या पता चला कि दुआएं बड़ी खूबसूरत मांगी लेकिन वहां इनको हिस्से किस चीज के मिलने हैं जो इनके कसब और कमाइयां थी। वल्लाहु सरीउल हिसाब, और अल्लाह ताला जल्द हिसाब लेने वाला है। आपके सामने इस आयत को मैंने किस सोच के साथ रखा कि इसमें लफ्ज फज़कुरुल्लाह है, अल्लाह का जिक्र, और का ज़िक्रिकुम आबाकुम अशद्दा ज़िक्रा। आज हमारे कल्चर में जिक्र का कुछ मफहूम बदल दिया गया है। एक जुमला लिख लें, बाद में उस पर गौर करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा समझ आएगी मेरी इस बात की, जो हो सकता है अभी ना आए, कि आज के दौर में हमने विर्द का नाम जिक्र रख दिया। विर्द क्या होता है, ये उंगली को देखें, ये आपको मेरे इशारों से समझ, अल्लाह अल्लाह अल्लाह, ये विर्द होता है। वरादा कहते हैं प्यासे का पानी की तरफ आना, तो विर्द कहते हैं किसी चीज़ को दोहराना, और आद उसकी जमा, यानी जब किसी चीज को कई बार पढ़ें और बहुत दफा पढ़ें तो लोग कहते हैं कि इसका जिक्र किया है। हालांकि अगर लोग जिक्र को देखें, जो इस वक्त मेरा मौजू नहीं है, इस पे बहुत सारी बातें हुई हुई हैं अल्हम्दुलिल्लाह, आप चाहें तो आपको मिल भी जाती हैं, लेकिन जिक्र में याद है। उर्दू में क्या कहते हैं, आपका जिक्र हो रहा था, कहते हैं ना, अभी अभी आपका जिक्र हो रहा था, तो क्या मतलब आप तस्बीह पे अल्लाह अल्लाह या उसका नाम लेते हैं अस्मा 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 अस्मा, या मिसाल है कि शम्मा शम्मा शम्मा, साइमा साइमा साइमा, आप ये तो नहीं कह रहे होते ना। तो हमारे जहनों में जिक्र लफ्ज के साथ एकदम एक कॉन्सेप्ट बन गया हुआ है, हालांकि वो विर्द है। जिक्र के याद, हम दिल में किसी को याद कर रहे होते हैं और एकदम उसका फोन आ जाता है। किसी की याद दिल में भी सताती है, अभी मुंह पे भी नहीं आती तो फोन आता है, तो क्या आप मुंह से बोल रहे थे, नहीं। तो जिक्र क्या, याद, दिल में अल्लाह की याद है तो ये दिल का जिक्र है। जुबान पे अल्लाह का जिक्र आ जाए, याद आ जाए, अल्लाह का नाम आ जाए, बिस्मिल्लाह सुभान अल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह माशाल्लाह, जिस जिस लफ्ज में लफ्ज अल्लाह आ रहा है तो वहां ये हमारे लिए वो लफ्ज बन जाएगा। बिल्कुल इसी तरह से जब आप किसी की दी हुई कोई चीज इस्तेमाल करते हैं तो आपको उस वक्त वो याद आ रहा होता है। बस आपके किचन में एक डिश है जो आपको आपकी बहन ने दी, जब उस डिश को देखते हैं कभी शौरी कभी गैर शौरी तौर पे वो याद आती है, आती है ना। आपको किसी ने कुछ सिखाया, किसी चीज की कोई रेसिपी आपने किसी एक से पहली दफा सीखी, जब वो चीज आप देखें खाएं पकाएंगे आपको याद आता है। शुक्र बिल कल्ब जिस तरह होता है, इसी तरह जिक्र बिल कल्ब होता है। शुक्र बिल लिसान होता है ना, जिस तरह जुबान पे शुक्र आता है इसी तरह जुबान पे जिक्र भी होता है। और अमल बिल जवारे जैसे होता है ना, इसी तरह जिक्र बिल जवारेह भी होता है। जिस बंदे को अल्लाह हर वक्त याद रहे, बस लोगों के बड़े खूबसूरत जुमले इस पे कि जिसको नेकी तो नेकी गुनाह करते हुए भी रब याद आए, ये भी जिक्र है कि मार बड़ी पड़नी है, ये जो मस्ती कर रही हो ना इसकी खूब बाद में सख्ती आनी है, ये जो 2 घंटे की मस्ती के लिए आ गई हो ना ये बाद में मेरी कितनी दर्दों की सूरत में आना है, ये भी जिक्र है। बात समझ गए। आज के मुसलमान ने जिक्र के नाम पे क्या कुछ बनाया ये तो फिर किसी दिन शेयर करूंगी, लेकिन मैंने अक्सर देखा है कि लोग जब किसी मुश्किल में आते हैं किसी परेशानी में पड़ते हैं तो क्या कहते हैं, कोई वजीफा बताएं, कोई दुआ बताएं। ऐसी आज सुबह मैं किसी दर्स की तैयारी कर रही थी कि शाबान के महीने के साथ मुसलमान क्या कुछ करते हैं, तो मेरे सामने एक लंबी लिस्ट खुल गई, वो इंशाल्लाह उस लेक्चर में शेयर करूंगी जो शाबान और आज का मुसलमान होगा। लेकिन जो चीज मैंने देखी कि लोगों को अनहोनी मुश्किल और लंबी चौड़ी दुआएं याद करनी पड़ती, और जितनी लंबी दुआ बताओ ना कहते हैं ये मौलवी ठीक है। जैसे मुझे किसी बड़े की बात याद आ गई, किसी बड़े मशहूर डॉक्टर के पास उसको ले गए घर वाले, उठा उठू के अच्छी खासी फीस थी, पहले वो जाने को तैयार नहीं थी, फिर जब तैयार हुई तो चली गई। अच्छा वहां जाके वो जो माशाल्लाह अपना तरीकाकार होता है, थे दर्द उथे पीड़ सारा कुछ कर, उन्होंने तो सोचा कि मुझे कोई दवाइयों का पलंदा मिलना है। वापसी पर डॉक्टर ने सिर्फ एक छोटी सी गोली दे दी और चंद चीजों का परहेज दिया। घर आके खूब नाराज हुई, एनी फीस दे के गए थे दित्ता की मगरों एक गोली नहीं समझे पंजाबी, जिनको नहीं आती उनसे माजरा था, वैसे आप सबको आती है। कहते हैं इतने पैसे लगा के आए हैं तो पीछे से एक ही गोली मिली है। हमारा क्या ख्याल होता है कि एक गोली देने वाला डॉक्टर बेकार है, निकम्मा है, इसको बाकी गोलियों के नाम नहीं याद हुए, इसने हमें पकड़ के एक दे दी। हालांकि उनको ये नहीं पता, माजरत के साथ उन डॉक्टरों से जो बहुत सारी गोलियां देते हैं और वो क्या है कि जी बहुत सारी वो गोलियां आपको होते क्यों देते हैं, कोई
किसी
एक तो
एक
काम
तो काम
करेगी ना,
करेगी
वो समझ नहीं पा रहे कि ये टाइफाइड है, ये मलेरिया है, ये कोई बुखार की अंदरूनी किस्म, वो कहते हैं दे दो जो भी होगा उससे फायदा हो जाएगा, तो बाकी क्या होंगी वो आपके गुर्दों पर असर करेंगी, वो फिर जिस समय जाके डिपॉजिट हो जाएंगी, समझ आ गई। एक गोली जो वाकई आपकी बीमारी से मुतल्लिक है ना, वो आपको ज्यादा फायदा देगी, ये बात मेरी आज से लिख ले, क्योंकि मैं दिन रात अपने प्यारे बहन भाई मुसलमानों को इधर उधर तड़पते देखती हूँ, कुछ बता दें, कुछ पढ़ने को दे दें, और यकीन करें लंबे चौड़े वजीफे हैं। ये शाबान की तैयारी में मैंने देखा और मेरी नजर घूम गई कि ये सच लिखा हुआ है, यानी एक स्लाइड अभी भी मैं खोल के अगर देखूं तो एक कोई वजीफा है और उसको उन्होंने लिखा हुआ है कि 1,000 बार आपने पढ़ना है, और पूरी लंबी लिस्ट है ये, इंशाल्लाह आने वाले किसी लेक्चर में आपके समय स्लाइड स्क्रीन पे शेयर करूंगी कि आज लोगों को किस मुश्किल में डाला हुआ है। रोजाना यानी शबानुल मुअज्जम का वजीफा, अब मैं वो वजीफा नहीं बताती आपको कहीं करने ही ना लग जाए, लेकिन 4 वजीफे उन्होंने लिखे हुए, एक वजीफा रोजाना 1,000 बार पढ़े, यानी पूरे शबान के महीने में आपने 1,000 बार ये वजीफा जरूर करना है, पूरे माह में 3 रोजे रखें, रोजाना आधा घंटा दुरूद शरीफ पढ़े और रोजाना 2 रकत नफिल। माजरत के साथ ये मैं नहीं बता रही, और नीचे हवाला नहीं कुछ नहीं, और नीचे लिखा हुआ है शबानुल मुअज्जम में 2 रकत नफिल पढ़ना 400 साल की इबादत से अफजल है। एक मिनट रुकिए, अगर ये बात सच है, हदीस कोई नहीं लिखी, कुरान की आयत कोई नहीं लिखी, तो आप मुझे ये बताइए कि अल्लाह ताला ने ये क्यों कह दिया कि इन्ना अनज़लनाहु फी लैलतिल कद्र, उसमें क्या कहा, लैलतुल कदर की फजीलत में क्या कहा, खैरुम मिन अल्फ शहर, वहां आ गया ना, तो अल्लाह ये भी एक मसला किसी कुरान की आयत में ना देते, क्या अल्लाह ने लोगों को महरूम करना था कि हम जैसों को कहीं ये वजीफा नजर आया तो हमने पढ़ लिया और बाकी महरूम रह जाए, क्या इंसानियत की हिदायत के लिए नाजिल करदा किताब में इसका तذکرہ नहीं होना चाहिए था। देखिए ना, 400 साल की इबादत सिर्फ 2 नफिल पढ़ने से मिलती है, तो कितना जुल्म है लोगों से उसको छुपाना, जिनको ये वजीफा आता है उनको तो इसको कागज की पर्चियों पर लिख के आम करना चाहिए कि अल्लाह के बंदो 2 रकतें पढ़ लो, 400 साल की इबादत के लिए कबूल होगी। ये सब बातें बगैर रेफरेंस के अगर हैं तो ये मैन मेड है, मैं उस पर भी नहीं जाना चाहती। आज आपके साथ बड़े प्यारे छोटे छोटे अजकार, 6 अजकार शेयर करूंगी, हर गम परेशानी दुख तकलीफ बीमारी और गुनाहों के खिलाफ कह लीजिए कि कारगर हथियार है, और इंशाल्लाह ये शेयर मैं कर भी दूंगी। किसकी रिवायत से आप तक ला रही हूं, अब्दुल रहमान बिन सादी रहमहुल्ला, आपने इनका नाम सुना है कि नहीं सुना, आज के दौर की मुझे लगता है कि मॉडर्न तफसीर में ऑथेंटिक तरीन तफसीर में इनका नाम आता है, यानी मुस्तनद तरीन तफसीरों में एक तफसीर सादी है, रिसेंटली आज से 5-6 साल पहले दारुस्सलाम मकतबा से वो छपी है, 3 जिल्दों में, आपके घर में होनी चाहिए, अगर नहीं है तो पढ़ें, उनकी बात है, यानी ये आज के सारा जो रेफरेंस है और उन्होंने हर बात के साथ हदीस दी है, मैं आपके साथ शेयर करूंगी। अब्दुर्रहमान बिन सादी रहमहुल्ला कहते हैं कि मैं किताबो सुन्नत के मुताले के बाद इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि जिन अजकार के पढ़ने पर जोर दिया गया, यानी हदीस में, ऑफकोर्स कुरान पाक में तो तस्करा है, लेकिन क्या पढ़ें और उससे ज्यादा फायदा है, जिन अजकार पर ज्यादा जोर दिया गया वो सिर्फ 6 हैं। 6 जिक्र ऐसे हैं कि जिनके पढ़ने पे हैं, और वो कौन से हैं, जिसमें हर बीमारी परेशानी दुख तकलीफ और गुनाहों के खिलाफ एक हमारी मदद है। तो आइए जरा सा देखते हैं, आपके जहनों में आ रहा होगा कि बहुत मुश्किल चीजें, बहुत बड़ी बड़ी चीजें होंगी, ऐसा बिल्कुल नहीं, क्योंकि देखिए आप और मैं अपने ऊपर लेकर सोचें तो हम में से हर एक किसी न किसी मुश्किल में, बीमारी में, परेशानी में, तकलीफ में, इनफरादी तौर पे अगर अल्लाह आपको महफूज भी रख दे तो इज्तमाही तौर पे तो है ना, तो इंशाल्लाह इन चीज़ों को इस सोच के साथ सीखेंगे आज हम कि हमने अब से लेकर इन चीज़ों को आदत बनाना है और रमज़ान में हमने इनको कसरत से पढ़ना है, क्योंकि आप देखिए कि हर वक्त भी आप नफिल नहीं पढ़ सकते, हर वक्त भी कुरान पाक नहीं पढ़ सकते, बल्कि मैं चाहूंगी कि सब सिस्टर्स इन अज़कार को इस सोच से सीखें कि रमज़ान में हमने इफ्तारियां बनाने के दौरान, कपड़े इस्त्री करने के दौरान, जब भी हम मुख्तलिफ काम करते हैं कि जिसमें हमारी जुबान खाली होती है लेकिन हम देख के भी नहीं पढ़ सकते, बाज़ दफ़ा ज़हन भी साथ नहीं लगता, तो हमने उस वक़्त पढ़ना है, तो आप कह सकते हैं कि 24 घंटे का इंशाल्लाह हमारा इबादत में वक्त गुजरेगा। तो पहला जिक्र जिसके पढ़ने पर बहुत फायदा है वो है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजना। जितना ज्यादा एहतमाम इसका होगा उतनी गम परेशानियां दुख तकलीफें हमारी जिंदगी से निकल जाएंगी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिन के आगाज में और दिन के अख्ताम पर बहुत ज्यादा दुरूद पढ़ते थे। रिवायत है निसाई की, टॉपिक है किताब नमाज में भूल जाने के मुतल्लिक असबाब। उसमें ये एक हदीस आती है, सुन लीजिएगा। हदीस नंबर 1284 अबू तलहा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन तशरीफ लाए। इमेजिन करें क्या खुश नसीब थे वो लोग जो नबी सल्लम के चेहरे का दीदार करते थे। दुआ करेंगे कि अल्लाह ताला हमें जन्नत में इस नेमत से महरूम ना करें। आमाल तो ऐसे नहीं है, लेकिन हम उनसे मोहब्बत की बुनियाद पर यह दुआ तो कर सकते हैं। कहते हैं कि आपके चेहरे पर सुरूर झलक रहा था, मुतमईन, खुश, एकदम जैसे आप कह सकते हैं कि रिलैक्स्ड फेस था आपका। हमने कहा, हम आपके चेहरे अक्तस पर खुशी के आसार देख रहे हैं। आपने फरमाया, मेरे पास एक फरिश्ता आया और उसने कहा, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बेशक आपका रब्बे ताला फरमाता है कि आपको ये बात पसंद नहीं कि जो शख्स भी आप पर दुरूद पढ़ेगा मैं इस पर 10 दफा रहमत करूंगा। यानी एक दफा जो दुरूद पढ़ेगा 10 दफा रहमत करूंगा, और जो भी आप पर सलाम कहेगा मैं इस पर 10 बार सलाम नाजिल करूंगा। अब इमेजिन करें आपने, मैंने क्या कहा, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। अब आप देखिए कि अगर सुबह शाम की दुआएं आपके पास किसी भी कार्ड या बुक की सूरत में है, मुख्तसर सा दुरूद अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद, बस इतना ही है। 100 दफा सुबह और 100 दफा शाम को पढ़ने का हुक्म है। रहमत उतरी, 100 दफा पढ़ा, एक दफा हुई तो 10 दफा हुआ, तो 100 दफा पढ़ने से कितना हो गया, 10 ज़रब 100, 10,000। आपके ऊपर सिर्फ इन कलेमात के पढ़ने से 10,000 बार अल्लाह की रहमत आई और अल्लाह ताला का सलाम आया, तो जिंदगी में गम परेशानियां रहेंगी। देखिए, मान लीजिए जिंदगी का सुकून, खुशी, इत्मीनान अल्लाह की देन है, और ये कब आता है, जब बंदा उसको डिजर्व करता है। आज भी आप देखिए, हकीकी इत्मीनान, खुशी आपको उन्हीं लोगों की जिंदगी में दिखेगी जो हत्तुल वसा अपनी सी कोशिश के मुताबिक अल्लाह ताला का जिक्र रखते हैं, अल्लाह को याद रखते हैं, अल्लाह की याद में और अल्लाह के हुक्म के मुताबिक जीते हैं। तो क्या मुश्किल है सुबह उठ के। अब आपके, अच्छा ये रमजान शुरू होने का वजीफा है, अच्छा ये रमजान के पहले अशरे की दुआ है, ये आखिरी के नहीं। जब जहां जैसे बैठे हैं सुबह उठ के अल्लाहुम्मा सल्ले, आपको याद नहीं रहता, आप उंगलियों पे पढ़ लें, और आपको तो है कि उंगलियों की ये पोरें भी गवाही देंगी। हदीस में आता है कि क्यामत के दिन ये उंगलियों की जो पोरे हैं, ये उंगलियां गवाही देंगी, इनसे सवाल किया जाएगा। तो आप देखिए अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मद। अब आप किसके पढ़ने के कई तरीके हैं, लोगों को भूल जाता है। अगर किसी को तस्बीह पे आदत है तो इस सोच के साथ कि तस्बीह पे आपकी उंगली की बोर लग रही है, बात समझ गए, याद दहानी के लिए, भूलता नहीं है, आपकी खुशी है, नहीं है तस्बीह, अब तस्बीह नहीं है तो पढ़ नहीं सकते, और तस्बीह के बगैर पढ़ते नहीं, ये बिल्कुल ज्यादती है। दो एक्सट्रीम है तस्बीह के बारे में, उसके बगैर कहते हैं पढ़ता नहीं, और वो कई कहते हैं उसको हाथ भी नहीं लगाना। आप अपनी उंगली को देखें ना, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद, और आप अपना दिल प्यार से भरें, क्यों अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद, क्यों मैं अल्लाह के नबी पर दुरूद भेज रही हूँ। वो 23 साल की मेहनत है, इंसानियत क्या थी, दुख में थी, गम में थी, जहालत में थी, बाप दादा के नाम पर उलट सुलट काम कर रहे थे। अभी आयतों में आपने सुना का जिक्रिया बाईकुम, अरबों की आदत थी, जाते हज पे थे, वहां जाके बाप दादा के कसीदे गाते रहते थे, मेरे बाप की इतनी जमीने और तेरे बाप की इतनी, और वो तो इतना बहादुर था और वो इतना था, वहां जाकर भी खानदानी सियासत लड़ लुड़ के आ जाते थे। आप जब अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद कहें तो अल्लाह के नबी का प्यार महसूस करें। देखिए ये कोई सर्विस नहीं, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद, क्या पढ़ा है, 100 बार पढ़ के भी अगर 10 बार भी दिल में अल्लाह के नबी की मोहब्बत और उनका मुकाम नहीं आया, तो मैं कोई गारंटी नहीं आपको दे सकती कि इससे फिर हमारे गम परेशानियां दूर होंगे। मसला क्या हो गया कि हमने जिक्र को बस लिप सर्विस बना दिया, जुबान की बात नहीं, सुकून से बात करें, ठीक है, शऊर से करें। सुबह नहीं पूरी 100 दफा पढ़ सके, गिन लें, 10 दफा भी पढ़ी है, 10 दफा आपने आदत बना लिया। मैं इसमें कोई फिर वजीफा नहीं दे रही, मुझे तो बात करते हुए डर लगता है। पिछले दिनों किसी तफसीर की क्लास में मैंने एक किस्सा किसी का सुना दिया कि हमारी एक स्टूडेंट थी, वो पढ़ के गई, वही आयत उनके जहन में थी कि अल्लाह सब कुछ कर सकता है, वो बच्ची की डिलीवरी के लिए गई, वहां उनको वो आयत याद आ गई, तो वो सोच से अल्लाह ताला को पुकारती रहीं कि तू तो साहिब कुन फयाकून है, तो तू मेरा मसला हल कर दे। तो अल्लाह ने आसानी वैसी करनी थी, उसकी दुआ के साथ उसका दिल जम गया। अब मुझे जवाब आ रहे हैं, लोगों के मैसेजेस आ रहे हैं, वो वजीफा बता दें कौन सा, वो आयत कौन सी। मैंने इतना इग्नोर किया, जब हमारे एडमिन जो सवाल का जवाब पूछते हैं तो मुझे और हैरत होती है, अल्लाह के बंदो मैंने बात किसी की कोट की है, ये वजीफा नहीं है। आप पढ़ भी लेंगे तो आपको कुछ नहीं मिलना अगर आपने उस आयत की तफसीर नहीं समझी भी, तो जो बोले दिल से बोले। अच्छा मैं यहाँ एक छोटी सी बात करूं, जब हम लोगों के साथ सोच के बोलते हैं ना, तो अल्लाह के साथ भी सोच के जिक्र करते हैं। हम लोगों के साथ भी सोचे, बड़ी खुशी हुई आपके आने की, अंदर कोई नहीं हुई होती, मुबारक हो, अंदर दिल में आग लगी होती है ये रिश्ता हो क्यों गया। बात समझ गया, इंसानों से भी बोले तो सच बोले, जब दिल में किसी से प्यार है ना तब बोले, जिस वक्त दिल कर रहा है कहने को वो आई लव यू तब बोले, झूठा प्यार झूठी बातें। और हम नाराज कोई नहीं होते, हम 10 बार दिन मैं आपसे नाराज हूं, 3 सेकंड बाद आपने उनसे बातें कर रहे हो, कहना कोई नाराज नहीं, कल वाकई हकीकी नाराज होंगी, कोई नहीं समझेंगे आपके मियाँ। बात समझ रहे, सच बोले, बी फेयर, ईमानदारी सबसे पहला तोहफा है एक बंदे का जो वो खुद को दे सकता है। इसके बाद आपका दिल एक ऐसा बर्तन बन जाता है कि अल्लाह ताला उसमें खैर और बरकत डालता है। आज आप देखिए एक इशू कितना आम है, लोग इधर की हदीस से उधर कोट करते हैं, उधर की उधर करते हैं। भाई आपने ये पहले भी की थी, आप क्योंकि अच्छा मैं तो पढ़े बगैर अग्गे कर देनी है, आपका क्या ख्याल है हदीसों को आगे फॉरवर्ड करने से आप ही जन्नत में चल जाएंगे, लेक्चर्स इधर के उधर करने से आप जन्नती हो जाएंगे। ठीक है आपकी नीयत है कि दूसरों से शेयर करूं, लेकिन आपको खुद भी सुनने चाहिए। सबसे पहले जिसको निशाना बनाए वो खुद को बनाए। तो पहला जिक्र आप सब पढ़ने की, सोचने, और जैसे कहना चाहिए सोच के साथ कि आप सीख रहे हैं, पढ़े अपने अपने उन पे, अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मद, इतना काफी है। आप नमाज वाला पूरा दुरूद पढ़ना चाहें फबे हाँ, लेकिन अल्लाह के नबी ने आपको मुश्किल में नहीं डाला। अब अगर मैं इसकी जगह कहूँ देखे ना अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मदिन, तो इतना छोटा सा है, आप ऐसा कर लीजिए कि आप पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मदिन वाला आली मुहम्मदिन कमा सल्लैत अला इब्राहिम, पूरा कहूँ, आप मुझे बताएं कि क्या ये पूरा पढ़ना गुना? नहीं गुना, नमाज में पढ़ते हैं ठीक है, बट मैंने अगर आपको इस हदीस के साथ ये पूरा कर दिया, इसलिए कि आप ये कहेंगे ये इन्होंने एक ही गोली दे दी है, 4-6 गोलियां दे दूं, तो ये मेरी ज्यादती होगी। देना उसने जात वो है, मालिक वो है, ठीक है, इसलिए आपको मुझे हमेशा जहां हदीस हमें रोके वहां रुक जाना चाहिए। चलिए दूसरे जिक्र पे चलते हैं, दूसरा जिक्र है कसरत से इस्तिगफार करना, अपने फारिग औकात में अल्लाह की तौफीक से इस्तग़फिरुल्लाह 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 का वर्द करते रहे। इसकी दलील क्या है, अबू मूसा अल अशरी रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, उनसे रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए तो हम बैठे हुए थे, आपने फरमाया मैंने जब भी सुबह की अल्लाह ताला से सुबह में 100 मरतबा बख्शिश तलब की, यानी सुबह होते ही आप पढ़ते हैं और आपको सुबह शाम की दुआ में ये वजीफा भी मिलेगा, अस्तग़फिरुल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह। और ये सिलसिला तो सहीहा की रिवायत है 1600 अल-मुजम अल-औसत लित-तबरानी 3879 इसका नंबर है। तो गुनाहों पे अस्तग़फार करना, पर किस सोच के साथ? बाद लोग कहते हैं अस्तग़फार पढ़ें कि इस्तग़फार पढ़ें कि उस्तग़फार पढ़ें, अल्लाह के बंदो अगर आपने ग्रामर नहीं पढ़ी हुई तो अल्लाह आपका सारा ही कबूल कर लेगा, लेकिन जिस जज्बे के बगैर पढ़ी तो कबूल नहीं होना, वो आपकी नदामत है, क्योंकि नदमुत तौबा। दिल में गुनाहों का एहसास रख के आप दिन में 100 बार कहते हैं मालिक माफ कर दे, पिछला माफ कर दे, आइंदा नहीं करूंगा, तो आप मुझे बताइए कि अल्लाह माफ नहीं करेगा? अल्लाह सुब्हानहू माफ कर देगा इंशाअल्लाह ताला। तो कसरत से इस्तग़फार, अब ये कब करें? हदीस में तो सुबह शाम की दुआ में आता है, कोशिश कर लें बांट लें। आप देखिए ना कि सुबह फजर के बाद आप कहते इतना टाइम नहीं होता बच्चों का नाश्ता बनाते हुए, बच्चों को आदत होगी, मेरी माँ नाश्ता बनाने के दौरान ये पढ़ती होती थी अस्तग़फिरुल्लाह, और जो बरकत होगी जो मोहब्बत होगी, और बच्चों को भी आदत होगी। बच्चे झगड़ते हैं अक्सर, खाने की टेबल पे झगड़ रहे हैं, रो रहे हैं, सुबह आप उठा रही हैं कपड़े पे नारी, आप अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद पढ़ती रहें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद, तो बच्चे को भी एक वक्त आएगा एहसास होगा कि मैंने इस वक्त बात कम करनी है। तीसरी चीज, तीसरा जिक्र जो सही अहादीस में मिलता है वो है या जल जलाली वल इकराम, या जल जलाली वल इकराम, या जल जलाली वल इकराम। कसरत से ये जिक्र जो है ये बने, आज देखिए कि ये भूली बिसरी सुन्नत है, ये कम पढ़ा जाता है, हालांकि नबी सल्लम ने इसके बारे में क्या कहा, आइए जरा सुनिए। आपने फरमाया, हजरत अनस रजी अल्लाह तआला अन्हु से ये रिवायत है, फरमाया कि या जल जलाली वाल इकराम को लाजिम पकड़ो, यानी इसको लाजिम पकड़ो, यानी अपनी दुआओं में बराबर पढ़ते रहो। अज़ाउ का मतलब है यानी बराबर पढ़ा करो, कसरत से पढ़ो, इसे लाजम पकड़ो। अल्लाह के नबी ने फरमाया, जो इस जिक्र को पढ़ेगा इसमें एक अजीम राज पोशीदा है। या जल जलाल के मानी है बहुत बड़े जलाल वाले, कामिल बुजुर्गी वाले, और अल इकराम के मानी है अपने औलिया यानी अपने दोस्तों के लिए इकराम और तकरीम की मालिक हस्ती। अगर आप गौर करें ना, तो जब आप या जल जलाली वाले इकराम कहते हैं ना, तो आप अल्लाह को कहते हैं कि अल्लाह तू सबसे बड़ा, सबसे कामिल, तू है ही कामिल, तेरा जलाल बहुत है। जलाल क्या होता है? रोब। किसी के ऊपर भी आप देखिए कि किसी का दिल में रोब महसूस करें तो दिल बंद नहीं होता उसका सोच के। तो जब आप और मैं अल्लाह सुबहान तआला के रोब को अपने दिल में महसूस करते हैं, तो आप बताइए कि क्या हमारे दिल पे उसका असर नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। आप अपने आप को इस चीज के साथ तैयार करें और बोलें कि अल्लाह मैं इस तरह पढ़ूंगा, और इंशाल्लाह आप देखिए कि जितना पढ़ेंगे आपको मिलेगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो इसको पढ़ेगा अल्लाह ताला उसकी हाजात को पूरा करेगा, जो उसके दिल में जो ख्वाहिश होगी जिस तरह से होगी। तो क्या पढ़ना है हमने? या जल जलाली वाल इकराम। अब देखिए हदीस में तो इतने ही लफ्ज है ना, क्योंकि आपने कहा यह कि अलैकुम, इसको लाजिम पकड़ लो, तो अब आप कहेंगे या जल जलाली वाल इकराम, अरहमनी, कुछ भी आप अपने पास से कह लें, वो आपकी अपनी मर्जी है, लेकिन जितने अल्फाज हदीस में वो इतने ही हैं। और ये वो आसान वज़ाइफ हम सीख रहे हैं कि जिसको याद भी नहीं करना पड़ता। मेरे अलावा आप यहाँ से उठेंगे आपको ये 6 अज़्कार याद हो चुके होंगे। पहला क्या था? اللهم صل على محمد। دوسرا کے استغفر اللہ استغفر اللہ। تیسرا کے یا ذل جلالی والاکرام, اور یہ بھی صحیح روایت ہے, ناصر الدین البانی نے اس کو صحیح کہا, ترمذی میں یہ 3525 نمبر کی روایت موجود ہے۔ چوتھا ذکر جس کی حدیثوں میں کثرت سے ہمیں ملتی ہے روایت کے ہم اس کو پڑھیں, وہ کیا ہے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ, لا نہیں حول کوئی گھیرنے والا, ولا اور نہ قوت کوئی قوت, الا باللہ مگر اللہ کے ساتھ, یعنی اللہ ہی کسی کام کے کرنے کی اس کے ہونے کی توفیق دیتا ہے, کوئی اور نہیں کرتا۔ اس کلمے کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو تاکید کی, اس کو پڑھا کرو, اور اسے جنت کا خزانہ کہا, اور آپ نے کہا کہ اس کے اوپر مداومت کرو, یعنی اس کو ہمیشہ پڑھو۔ آپ کر کے دیکھیے, आपको पता है कि इसके पढ़ने के बाद जो सबसे छोटी चीज बंदे को मिलती है ना, सबसे छोटी खुशी, गम दूर हो जाता है। तो मुझे बताइए, जब गम दूर हो गया पीछे क्या रह गया? बच्चों का गम दूर, शौहर के गम दूर, बीमारियों के, माल का फकर, ये गम ही है जिसके साए दिल पे पड़ते हैं, और जब रहनुमाई ना मिले तो वो डिप्रेशन बन जाता है। तो आप कह लें ये डिप्रेशन का इलाज है। इसकी रिवायत भी सुन लीजिए, कैस बिन साद बिन उबादा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि इनके बाप साद बिन उबादा ने इन्हें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत करने के लिए उनके हवाले कर दिया। देखिए ये भी अजीब सुन्नत थी सहाबा की, खुद कामों में थे, मसरूफ थे, तो अपनी औलादों को अल्लाह के नबी के पास छोड़ जाते थे कि एक तो उनकी तरबियत हो जाएगी और दूसरा ये कि आपकी खिदमत करेंगे, दुआएं लेंगे, और वो दुआएं रंग लाती हैं जब भी वक्त आता है। खैर, कहते हैं कि मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास था, मैं सलात पढ़कर बैठा ही था कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे पास से गुजरे। आपने अपने पैर से मुझे अपनी तरफ मुतवज्जे करने के लिए एक ठोकर लगाई, ऐसी जैसे कोई नीचे सो रहा और आप उसको जगाना चाहे तो आप जाके अपने अंगूठे से उसके पाँव को हिलाते हैं, यानी इस तरह से आपने उनको मुतवज्जे किया। फिर फरमाया, क्या मैं तुम्हें जन्नत के दरवाजों में से एक दरवाजा ना बताऊं? अंदाज देखिए, एकदम किसी को इल्म नहीं देना चाहिए, मुझे आता ही नहीं आपसे कहना चाहिए दर सुन ले, मैं पूछूं कि आप सुनना चाहते हैं, क्या आप तैयार हैं? जब भी किसी को भी इल्म दें, आप इधर क्लास करते हैं ना, आते ही झट से जी सीडी चला दें, रिकॉर्डिंग चला दें, टाइम कोई नहीं, नहीं पहले पूछें तैयार हैं। जब तक जहनी तौर पर हम तैयार नहीं होते, हम जिस्मानी तौर पर भी इन चीज़ों को नहीं लेते। तो आपने उनसे पहले पूछा, क्या तुम्हें एक ऐसी चीज़ ना, तो जन्नत का दरवाज़ा। अब आप सोचिए इसके बाद कौन कहेगा कि नहीं, तो ये कहते हैं मैंने कहा क्यों नहीं, तो आपने फरमाया वो है ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्ला। ये तिर्मिजी की रिवायत है 3581 नंबर की। तो चौथा जिक्र क्या सीखा हमने? ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्ला। अच्छा, हम कब कहते हैं? जब कोई नापसंदीदा चीज दिखे। एक सिस्टर ने सुनाया कि किसी जगह बात हो रही थी, तो वो उन्होंने उनकी बात सुन के लाहौल वाला कुव्वत इल्ला बिल्ला का इतना नाराज हुए कि रिश्ता टूटने पे बात चली गई कि आपने मेरी बात सुन के लाहौल क्यों पड़ा, क्योंकि मैं शैतान हूं। हमारे जहन में यह कि शैतान को भगाने के लिए लाहौल पड़ते हैं, ना समझिए। दिन में 100 दफा कहे आपकी रोटी जल गई, आपका खाना अच्छा नहीं पका, या अगर अच्छा पक गया, किसी ने आपकी बनाई हुई चीज की तारीफ की, बोले ला हौला वला कुव्वत इल्ला, मैंने कहा कि ये वो कोई कर गया, किसी ने ये चीज दे दी है। तो आप देखिए कि जब ये चीजें तर्जमे के साथ जहन में होती है ना, तो बहुत समझ आती है। फिर पांचवा जिक्र, ये आपका सबका मेरा फेवरेट जिक्र है, ला इलाहा इल्ला अंता सुभानक इन्नी कुंतु मिनज़ ज़ालिमीन, हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम की दुआ। फरमाया ये जिक्र गम और फिक्र को भगाने और खुशियां और मुसर्रत समेटने का सबब है। हजरत साद रजी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि नबी सल्लम ने फरमाया कि जुन्नून यानी यूनुस अलैहिस्सलाम की दुआ जो उन्होंने मछली के पेट में रहने के दौरान की थी, वो ये थी, ला इलाहा इल्ला अंता सुभानक इन्नी कुंतु मिनज़ ज़ालिमीन। आज भी इस दुआ को जो मुसलमान पढ़कर दुआ करेगा, अल्लाह ताला इसकी दुआ कबूल फरमाएगा। ये तिर्मिजी की रिवायत है 3505 नंबर की। और कुरान में अल्लाह ताला ने भी फरमा दिया, वकज़ालिका नुंजिल मोमिनीन, हम इसी तरह निजात देते हैं ईमान वालों को। मुश्किल है? आप कहते हैं इसके लिए तो पहले दोस्तों को दावत देनी पड़ती है, फिर इसके लिए हमें 1,25,000 गुठलियां लेनी पड़ती हैं, फिर दही बल्ले और पिज्जा ऑर्डर करना पड़ता है, फिर बच्चों को कहीं समेटना पड़ता है, फिर तैयारी करके जाना पड़ता है, फिर घंटों बैठते हैं, फिर पढ़ते हैं ला इलाहा इल्ला अंता, 4-5 घंटे के इंतजार के बाद हमें चाय खाना पानी मिलता है। अमूमन तो ऐसे ही है ना, ये आज के मुसलमान ने जिक्र के साथ जो कर लिया तो कर दिया। अल्लाह कहता है तुम दिल के एहसास और शऊर से ये बात करो। मैं किसी जगह गई और सहेलियां थी सारी, तो उन्होंने कहा कि हमारी दोस्त ने हमें ये पढ़ने को दिया ये वो, तो नए लोग थे, बिल्कुल लाइट माइंडेड बात हो रही थी। तो मैंने उन्हें कहा कि सिस्टर्स ये बताइए कि आप ये इस सोच से पढ़ेंगी ना कि आपकी दोस्त का वो फला मसला जो हुआ वह वो खत्म हो जाए। कहती जी बिल्कुल। तो मैंने कहा आप देखिए इसका तर्जुमा क्या है, अब आप भी गौर करें, ला इलाहा इल्ला नहीं है कोई मगर तू, ला इलाहा इल्ला अंता तू ही है, सुभाना का, हालांकि इसकी जरूरत नहीं थी। इस पे मैंने एक बड़ा छोटा सा सेशन दिया था एक मौके पे, याद आ रहा है, उसमें ये 3 स्टेप्स बताए थे। पहले ला इलाहा इल्ला अंता है ही तू, इस कलमे से ज्यादा खूबसूरत तरीके से उलमा कहते हैं कि अल्लाह की तकदीस हो ही नहीं सकती कि सुभाना का, पहले अल्लाह की वहदानियत ला इलाहा इल्ला अंता तू है, फिर सुभाना का, फिर इसमें अल्लाह ताला की तकदीस है हर शिर्क से पाक है, हर बात से पाक है जो लोग कहते हैं, और तीसरा इन्नी कुंतु मिन जालिमीन, मैं बड़ी जालिम हूँ। मैंने कहा देखिए इसका तर्जमा तो ये बना है कि अल्लाह तू पाक है और तेरे जैसा कोई नहीं और मैं बड़ी जालिम हूँ। मैंने कहा आप अपनी दोस्त के लिए पढ़ रहे हैं ना, तो फिर आपको इसको बदलना पड़ेगा ना। आप ये कहना कि ला इलाहा इल्ला अंता नहीं है कोई मगर तू, सुभाना का, पाक है तू, और ये मेरी दोस्त बड़ी जालिम है। नहीं समझे? इन्नी कुंतु मिन ज़ालिमीन कहने से तो मैं आप पे आई ना। कहती ये तो हमने कभी सोचा ही नहीं। हंसने लग गई, मजाक करने लगी, आज क्या आप हम पढ़ेंगे उतनी देर तुझे कहेंगे, जो दोस्त थी जिसके लिए वो पढ़ रही थी। बगैर सोचे समझे ये बातें ऐसे ही हैं कि बस आप किसी चीज की तासीर को महसूस किए बगैर वो करें, आप पढ़ें। देखिए मैं कह सकती हूँ कि मेरी आजमाइश की तो जरूरत ही नहीं है, अल्लाह और उसके रसूल ने ये बात कह दी कुरान में, अल्लाह की बात है ये, मैंने आपके सामने हदीस की बात कर दी, तिर्मिजी रिवायत है 3505 नंबर की। किसी को शक है इसमें? जिंदगी में कोई किसी भी गम का शिकार हो, बताइए मछली के पेट में तो नहीं हम में से कोई घुसा होता? हजरत यूनुस को इमेजिनेशन में लाए, और वो जब मछली के पेट में होंगे क्या उनका सांस नहीं घुट रहा होगा? वहां कोई खड़े होने बैठने की भी जगह नहीं थी, और वहां जब दिल की गहराइयों से ये जुमला उनके जुबान से निकला तो क्या अर्श पे नहीं गया होगा? रिवायत में आता है कि अर्श पे फरिश्तों ने आवाज सुन ली थी, और कह रहे हैं दबी दबी आवाज है ये, जैसी शुरू में आपकी खुटी खुटी आवाज आ रही थी माइक पे। हाँ क्यों, ये आवाज किसकी है? अच्छा जानी पहचानी है। फिर फरिश्तों ने कान लगा के कहा होगा, अच्छा ओ ये तो यूनस है, अच्छा ये वो है जो खुशी के दिनों में पुकारता था, आज लगता है ये किसी गम में फंसा हुआ है। इसीलिए अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जो खुशी के दिनों में अल्लाह को याद रखता है, अल्लाह ताला गम के दिनों में उसकी दुआएं जरूर सुन लेता है। तो अब आप बताइए कि जब यूनुस अलैहिस्सलाम ने वहां पढ़ा तो मछली के पेट से निकल आए, अल्लाह ने निकाल दिया, तो क्या मेरे आपके गम ज्यादा, हमारी बीमारियां ज्यादा? और मुझे लगता है कि जितनी हमें नफसा नफसी पड़ी हुई है आज गम ज्यादा है, इस सोच के साथ क्या करें, अपने ही नहीं मसले खत्म। आप किसी को नेकी की दावत तो दे, मैं कहती हूँ छोड़ें बाकी चीजों को, सिर्फ नेकी की दावत दें, या हमारे गम या हमारी खुशियां में रोक लेते हैं। हमारा स्टाइल ही जिंदगी का ये बन गया, हम करें भी तो क्या करें। आप कहते हैं हमें तो समझ आती है, हमारे साथ वालों को तो नहीं आती, तो क्यों नहीं समझ आती उनको? बात समझ गए? तो जब भी आपका दिल बुरा हो, होता है हर एक इंसान को, होता है डिप्रेशन होता है, मौसम बदलता है तो होता होगा, बीमारी से उठे तो होता है, और सबसे बड़ा मैंने जो सिस्टर्स को देखा है पाकिस्तान से आती हैं तो होता है, आके भी कई दो दो हफ्ते परेशान रहती हैं, दिल नहीं लग रहा, कभी कोई याद आता है, किसी को जहाज का फोबिया है, हाय जहाज में बैठूंगी तो दम घुटेगा। आप पूरे शऊर से पढ़ें ला इलाहा इल्ला अंता सुभानका इन्नी कुंतु मिनज़ ज़ालिमीन, इंशाल्लाह आप अपना दिल खुलता हुआ महसूस करेंगे। फिर उसके बाद छठा जिक्र, जो तीन चार लफ्जों का मजमूआ है जो हम सभी दिन रात नमाजों के बाद पढ़ते हैं, सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहु अकबर, इससे मिलते जुलते लफ्जों को हमारी जुबान में क्या कहते हैं? तीसरा कलमा, ठीक है? लेकिन ये चार लफ्ज हैं, सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहु अकबर। इसके बारे में रिवायत आती है इब्ने माजा में 3809 नंबर की, सही रिवायत है, हजरत नोमान बिन बशीर रजी अल्लाह अन्हुमा से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम लोग अल्लाह की अजमत का जो जिक्र करते हो, यानी तस्बीह सुबहानअल्लाह, तहलील, तहलील किसको कहते हैं अरबी में? ला इलाहा इल्लल्लाह कहने को, और तमहीद, तमहीद क्या है? अल्हम्दुलिल्लाह कहना। फरमाया वो अर्श के इर्द गिर्द चक्कर लगाते हैं, इमेजिन करें, इनकी ऐसी भिन बनाहट होती है जैसे शहद की मक्खियों की भिन बनाहट, भिस 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 की आवाज आती है, जैसे आप पढ़ते हैं ना सुबहानअल्लाह, और ये जो हल्की सी विस्पर है ना, फरमाया ये अर्श के गिर जाके चक्कर काटती है जैसे मक्खियों की भिन बनाहट होती है, वो अपने कहने वाले का अल्लाह के दरबार में जिक्र करते हैं, आपका जिक्र हो रहा है आसमान पे। पर फिर कहा क्या तुम नहीं चाहते कि अल्लाह के दरबार में तुम्हारा जिक्र होता रहे? चाहते हैं ना, आप यहां बैठे पढ़े सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहु अकबर, और वहां आसमानों पे आपका जिक्र हो रहा है, फरिश्ते अल्लाह को बता रहे हैं तेरा वो बंदा वहां जिक्र कर रहा है, तो क्या मैं आप नहीं चाहते? मुझे बताइए कितना वक्त लगा, पहला क्या था? अल्लाहुम्म सल्ली अला मोहम्मद, दूसरा क्या? अस्तगफिरुल्लाह, तीसरा बोलिए या ज़ल जलाल वल इकराम, चौथा ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्ला, पांचवा ला इलाहा इल्ला अंता सुभानक इन्नी कुंतु मिनज़्ज़ालिमीन, और छठा सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहु अकबर। अब मुझे बताइए कितना वक्त लगा, इतने थोड़े से वक्त में अगर आप और मैं वो फायदे और समरात समेट लें जो बहुत कुछ पढ़ पढ़ा के भी बाज़ दफ़ा नहीं मिलते, तो आप मुझे बताइए कितने नफ़े का सौदा है। अल्लाह के पास आपका जिक्र हो रहा है इनके पढ़ने से, लेकिन आजजी और नरमी और ये सब कुछ है, और आप देखेंगे कि ये वो चीज़ें हैं कि जिसको आम करने की ज़रूरत है। आज हर चीज़ के लिए लोग क्विक सेट पे आ गए हैं, शॉर्टकट्स पे आ गए हैं, दीन के नाम पर भी लोगों को मुश्किल चीज़ों में उलझाने की बजाय अगर आप सुन्नत की वो चीज़ें आम करते जाएं जो कि बहुत ज़्यादा लोगों को फ़ायदा दे सकती हैं, तो मुझे लगता है कि ज़्यादा लोग उसको कबूल करेंगे। अब हम बात करें कि रमज़ान आने वाला है, रमज़ान आएगा, अगर आज आपने मैंने ये चंद अज़कार सीख लिए, क्या मैं और आप आज ये वज़ाइफ़, जो आज वज़ाइफ़ ही है ना, आप इसको वजीफ़ा कह लें, जो साथी आज नहीं आए, भाई क्या हुआ था वहाँ, छह वजीफे बता के गई हैं बाजी, अफसोस होगा उनको? दर्स का कोई अफसोस नहीं होगा, वो कहेंगे अच्छा तुमने लिख लिया तो कोई किताब नहीं दे गई साथ, हम वही पढ़ लेंगे। वजीफों के जरिए आप लोगों को कुरान की तरफ बुलाएं, हदीस की तरफ बुलाएं, क्योंकि देखिए हर एक किसी ना किसी तकलीफ में मुबतला है, रास्ता नहीं मिलता, तो हमने इस आने वाले रमजान को इंशाल्लाह ताला अपनी जिंदगी का बेहतरीन रमजान बनाना है। नियत करें मैंने अपने जुबान को जिक्र से तर रखना है, मैंने छोड़ना नहीं है, मैंने अपने आप को नहीं लाना, किसी चीज में नहीं लाना। और आप देखिए ना कि ये वो इबादत है जिसके लिए ना वजू की जरूरत है, ना किबला रुख होने की जरूरत है। अब आप सवाल मुझसे पूछें अच्छा इसके लिए दुपट्टा सर पे लेना जरूरी है? भाई नहीं जरूरी, वजू करना जरूरी है? नहीं जरूरी। अब आप देखिए ना جب دین کو مشکل بنا دیتے ہیں نا تو اس کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ وہ پھر ایک خاص ماحول ایک خاص گیٹ اپ میں شامل ہو جاتا ہے، لوگ کہتے ہیں اچھا جی نہیں پھر بے ادبی ہوتی ہے. دیکھیے بندہ مومن کے تو دل میں قرآن ہے، حافظ قرآن ہے، اس کے سینے میں پورا قرآن ہے کہ نہیں؟ تو وہ دوپٹہ کبھی سر سے نہیں اتار سکتا، وہ شاور نہیں لے گی یا نہیں رہے گا. اصل بات ہے کہ دین کی روحانیت لے کر آئے. اور آپ دیکھیے کہ میں سوچتی ہوں، اور اکثر جب بھی میں آتی ہوں مسجد میں، میں یہ سوچتی ہوں جتنی کلاسز مسجدوں کے اندر ہوتی ہیں نا، وہاں اس کی ایک اسپرچویلٹی اور اسے ایک اللہ کے گھر کی برکت کو سمیٹنے کے لیے اگر لوگ وہاں آ کے بیٹھ جائیں نا تو وہ بھی تھوڑا نہیں. کہاں ہمیں وقت ملتا ہے اپنے معمولات میں سے کہ ہم مسجدوں کا رخ کریں؟ گھر ہے، بازار ہے، گروسری سٹورز ہیں، شادی ہالز ہیں، ایئرپورٹس ہیں، گاڑیوں میں گھنٹوں کے اعتبار سے ہیں، یہ پانچ چھ ہماری پسندیدہ جگہ ہیں نا. تو اس سوچ کے ساتھ بھی کلاس میں مسجد میں آنے کا اہتمام کیا کریں کہ آپ کو مجھے کچھ گھنٹے تو اللہ کے گھر میں رہنے کا موقع ملتا ہے. میں جب حرم میں گئی اور جب بھی اللہ تعالیٰ لے جاتا ہے تو میں ان دنوں اپنے آپ سے اکثر کہتی ہوں اب مرنا ہے تو مر جاؤ، اللہ اگر موت لکھی ہوئی تو دے دے، کیوں تیرے گھر کی موت ہے. میں جب درس کے لیے یا کہیں سیکھنے سکھانے کے لیے جاتی ہوں تو میں اپنے دل سے باتیں کر کے نکلتی ہوں، اللہ موت دینی تو ہے ہی ہے، ایمان والی دینی ہے، تیری رضا والی ہے، کچھ کام کرا لے تو رستے میں دے دینا، کوئی اچھا کام کرتے ہوئے دنیا سے جائے نا. تو مسجد میں آپ جتنا وقت ہوں گے نا سیکیورڈ ہوں گے.